एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार। अब अपनी भाषा में ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे जाने पहचाने दौर की बात करेंगे, पुनर्जागरण, या जिसे हम रनिसा भी कहते हैं।
हाँ,
हमने स्कूलों में पढ़ा है, फिल्मों में देखा है, और अक्सर ना एक तस्वीर बनती है दिमाग में।
हाँ बिल्कुल, एक सुनहरे यूरोपीय युग की तस्वीर है ना, जहाँ कला, विज्ञान, सोच सबको जैसे एकदम नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। हाँ, खास तौर पर इटली में।
हाँ वही। लेकिन सवाल यह है कि क्या कहानी सिर्फ इतनी है? क्या ये वाकई बस यूरोप का या कह लें इटली का मामला था?
यही यही सवाल आज हमारी चर्चा के बिल्कुल केंद्र में है। क्या वो तस्वीर पूरी है जो हमें अक्सर दिखाई जाती है? आज हम जेरी ब्रॉटन के काम के जरिए ना इसी पारंपरिक सोच को थोड़ा चुनौती देंगे।
अच्छा, जेरी ब्रॉटन। हाँ, उनकी किताबें हैं द रेनेसांस और एक और है द रेनेसा अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। ये हमें एक बिल्कुल अलग, बल्कि कहना चाहिए कि ज्यादा वैश्विक नजरिया देती हैं।
और ये नजरिया आज क्यों जरूरी है समझना? मतलब पुरानी बात हो गई है ना?
नहीं देखिए, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें सिखाता है कि संस्कृतियां ना अकेले में नहीं पनपती, वो हमेशा एक दूसरे से कुछ लेती हैं, कुछ देती हैं, लेन देन होता है।
हाँ सही कहा।
और ये भी कि जिसे हम इतिहास मान लेते हैं वो अक्सर एक चुनावा नजरिया होता है, किसी एक तरफ की कहानी। आज की हमारी जो दुनिया है इतनी जुड़ी हुई, उसे समझने के लिए ये बातें जानना बहुत जरूरी है।
तो चलिए फिर पुनर्जागरण की इस कहानी को दोबारा देखते हैं जेरी ब्रॉटन की नजरों से।
बिल्कुल, तो शुरुआत करते हैं लेखक से ही, जेरी ब्रॉटन। ये कोई ऐसे ही मतलब आम इतिहासकार नहीं है, लंदन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी में रेनेसा स्टडीज के प्रोफेसर हैं, अपने फील्ड के बहुत बड़े नाम हैं।
अच्छा।
लेकिन उनकी खासियत सिर्फ यूरोप के पुनर्जागरण तक ही सीमित नहीं है, वो वैश्विक इतिहास और वो जो पुराने नक्शे बनाने की कला होती है,
कार्टोग्राफी, नक्शानवीसी।
हाँ नक्शानवीसी, और अलग अलग संस्कृतियों के बीच जो लेन देन होता है उसके भी गहरे जानकार हैं।
तो ऐसा क्या खास है उनके नजरिए में? मतलब क्यों उनकी बात अलग है दूसरों से?
देखिए, दो मुख्य बातें। पहली तो उनका भाषा ज्ञान, वो अरबी और फारसी जैसी भाषाएं जानते हैं।
अरे वाह।
हाँ, तो इसका सीधा मतलब यह है कि वो उन असली दस्तावेजों को पढ़ सकते हैं जिन तक ज्यादातर पश्चिमी विद्वान पहुंच ही नहीं पाते। ये उन्हें एक बिल्कुल अलग खिड़की देता है उस दौर को समझने की।
और दूसरी बात?
दूसरी बात है उनका दायरा, उनका स्कोप। वो इतिहास को सिर्फ कला या राजनीति तक नहीं रखते, वो इसमें व्यापार, भूगोल, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी सब कुछ जोड़कर देखते हैं। उनका मानना है कि पुनर्जागरण की उन शानदार इमारतों और पेंटिंग्स को समझना है तो हमें उस दौर के मसालों के व्यापार को, रेशम के धागों को और दुनिया के बदलते हुए नक्शों को भी देखना होगा। सब जुड़ा हुआ है।
ये तो दिलचस्प है। तो फिर उनकी किताबों का निचोड़ क्या है? उनका मेन आर्ग्यूमेंट, मुख्य तर्क क्या है इस पूरी बहस में?
ब्रॉटन का मुख्य तर्क ना काफी क्रांतिकारी है, कम से कम उस तरीके से तो बिल्कुल अलग है जिस तरह से पुनर्जागरण को आमतौर पर पढ़ाया जाता है। वो कहते हैं कि पुनर्जागरण सिर्फ इटली में वो जो प्राचीन यूनानी और रोमन ज्ञान था उसका फिर से जन्म या रीबर्थ नहीं था।
अच्छा, तो फिर क्या था?
ये उससे कहीं ज्यादा जटिल था, कहीं ज्यादा डायनामिक, और सबसे जरूरी बात, कहीं ज्यादा वैश्विक प्रक्रिया थी, ग्लोबल।
वैश्विक प्रक्रिया, ये सुनने में ही लगता है कि पारंपरिक कहानी से बहुत अलग है। इसका ठीक ठीक मतलब क्या हुआ? मतलब कैसे वैश्विक?
इसका मतलब यह है कि पुनर्जागरण की जो चिंगारी थी वो सिर्फ यूरोप के अंदर से नहीं आई। ब्रॉटन इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि इसकी असली ऊर्जा आई पूर्व और पश्चिम के बीच जो व्यापार बढ़ रहा था उससे, नई तकनीकों के लेन देन से, और सबसे महत्वपूर्ण इस्लामी दुनिया के साथ जो गहरा बौद्धिक और सांस्कृतिक लेनदेन चल रहा था उससे। वो उस छवि को तोड़ते हैं जो 19वीं सदी के इतिहासकार जैकोब बर्खार्ट जैसे लोगों ने बनाई थी, जो सिर्फ इतालवी कला, साहित्य और व्यक्तिवाद पर टिकी है।
तो बर्खार्ट की वो जो इटली में पुनर्जन्म वाली थियरी है उसके बजाय ब्रॉटन क्या तस्वीर पेश करते हैं?
ब्रॉटन कहते हैं कि जिसे हम पुनर्जागरण कहते हैं ना, वो असल में वैश्वीकरण का, ग्लोबलाइजेशन का पहला बड़ा दौर था। एक ऐसा समय जब दुनिया के अलग अलग हिस्से सही मायनों में एक दूसरे से जुड़ रहे थे।
कैसे जुड़ रहे थे?
व्यापार से, विचारों से, तकनीक से, और हाँ लड़ाइयों से भी। ये जुड़ाव बहुत वाइब्रेंट था, बहुत कॉम्प्लेक्स था, और अक्सर हिंसक भी। इसमें इस्लामी दुनिया की जो ज्ञान की संपदा थी, एशिया के व्यापार मार्ग थे, चीन से आई या वहां विकसित हुई तकनीकें थीं जैसे प्रिंटिंग का आइडिया, और यूरोप की समुद्री खोज यात्राएं। इन सब का मिला जुला योगदान था। ये किसी एक महाद्वीप की उपलब्धि नहीं थी, बल्कि कई सभ्यताओं के टकराव और सहयोग का नतीजा था।
ये तो वाकई पूरी सोच को हिला देने वाला विचार है। चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। ब्रॉटन के विश्लेषण के मुख्य बिंदु क्या हैं? कहां से शुरू करें? वैश्विक रिश्तों से और खासकर इस्लामी दुनिया के प्रभाव से? आपने कहा यह सिर्फ यूरोपीय घटना नहीं थी।
बिल्कुल, ब्रॉटन एक अहम तारीख से बात शुरू करते हैं, 1453। ये वो साल है जब ऑटोमन तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल यानी आज का इस्तांबुल जीत लिया।
हाँ, ये तो पड़ा है। इसे अक्सर एक दुखद घटना की तरह देखा जाता है पश्चिम में।
हाँ, कि यूरोप का पूरब से जुड़ा एक बड़ा दरवाजा बंद हो गया। लेकिन ब्रॉटन इसे एक नए मोड़ की तरह देखते हैं। इस घटना ने क्या किया कि जमीन के रास्ते जो व्यापार होता था उसे मुश्किल बना दिया।
अच्छा,
नतीजा यूरोप के व्यापारी, खासकर पुर्तगाल और स्पेन वाले, समुद्र के रास्ते एशिया तक पहुंचने के लिए उतावले हो गए। इसी ने कोलंबस और वास्को डी गामा जैसी यात्राओं को, आप कह सकती हैं, हवा दी।
और इस्लामी दुनिया की भूमिका इसमें कहाँ फिट होती है? सिर्फ व्यापार मार्गों को कंट्रोल करने वाले के तौर पर या कुछ और भी था?
भूमिका इससे कहीं ज्यादा गहरी थी और सकारात्मक भी थी। ब्रॉटन उस आम धारणा को तोड़ते हैं कि प्राचीन यूनान का सारा ज्ञान यूरोप में खो गया था और फिर पुनर्जागरण में फिर से खोजा गया।
अच्छा, तो खोया नहीं था।
सच ये है कि ये ज्ञान, गणित, चिकित्सा, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, ये कभी खोया ही नहीं था। इसे सदियों तक बगदाद, कॉर्डोवा, कैरो जैसे इस्लामी दुनिया के महान ज्ञान केंद्रों में न सिर्फ संभाल कर रखा गया, बल्कि इस पर और काम भी हुआ, इसे विकसित किया गया।
अरे, जैसे कोई उदाहरण?
जैसे अलखावारिज्मी का काम, जिनसे अलजेब्रा शब्द निकला, या इब्न अल हैथम का ऑप्टिक्स पर किया गया काम, जिसने बाद में यूरोपीय कलाकारों को पर्सपेक्टिव समझने में मदद की होगी।
अच्छा, तो ये फिर से खोजना, रीडिस्कवरी, दरअसल एक तरह की फिर से मुलाकात थी उस ज्ञान से जो कहीं और जिंदा था और फल फूल रहा था।
बिल्कुल सही, एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, फिर से मुलाकात। और ये ज्ञान यूरोप कैसे पहुंचा? स्पेन और सिसली जैसे इलाकों के जरिए, जहां मुस्लिम, ईसाई और यहूदी संस्कृतियां साथ रहती थीं, वहां अरबी किताबों का लैटिन में अनुवाद हुआ।
अच्छा, अनुवाद के जरिए?
हाँ, जेराड ऑफ क्रेमोना जैसे अनुवादक थे जिन्होंने अकेले ही ढेरों वैज्ञानिक और दार्शनिक ग्रंथ अनुवाद किए। और ये सिर्फ ज्ञान की बात नहीं थी, कला में भी लेन देन था। वेनिस के मशहूर पेंटर थे जेंटाइल बेलिनी।
हाँ, नाम सुना है।
वो ऑटोमन सुल्तान मेहमद द्वितीय के दरबार में इस्तांबुल गए और उनका मशहूर पोर्ट्रेट बनाया। वो तस्वीर आज भी मौजूद है, दो दुनियाओं के बीच संवाद का एक प्रतीक है। और कमाल की बात यह कि सुल्तान मेहमद खुद कई भाषाएं जानते थे, कला विज्ञान के संरक्षक थे। उन्हें भी एक तरह का रेनेसा प्रिंस कहा जा सकता है, बस वो यूरोप में नहीं थे।
ये व्यापार और लेन देन की बात वाकई बहुत दिलचस्प है। ब्रॉटन का दूसरा मुख्य बिंदु शायद इसी से जुड़ा है, वाणिज्य यानी ट्रेड कैसे संस्कृति का इंजन बना। अक्सर हम कला को ना पैसों से अलग दिखना चाहते हैं, पर ब्रॉटन कह रहे हैं कि ये जुड़े हुए थे।
हाँ, ब्रॉटन यहाँ काफी यथार्थवादी, मतलब प्रैक्टिकल नजरिया अपनाते हैं। वो कहते हैं कि पुनर्जागरण की वो जो शानदार पेंटिंग्स हैं, मूर्तियां हैं, इमारतें हैं, ये सब हवा में नहीं बनी, इन्हें बनाने के लिए पैसा चाहिए था।
जाहिर है।
और वो पैसा आ रहा था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बैंकिंग से। फ्लोरेंस का मेडिसी परिवार, सोचिए, वो मूल रूप से बैंकर थे, या वेनिस जैसा शहर जिसकी पूरी ताकत ही समुद्री व्यापार पर टिकी थी। इन्हीं की दौलत ने माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विची जैसे कलाकारों को काम करने का मौका दिया, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को फंड किया।
और ये व्यापार भी, जैसा आपने कहा, वैश्विक था, मतलब सिर्फ यूरोप के अंदर नहीं हो रहा था।
निश्चित रूप से, यूरोप में गर्म मसालों की भारी मांग थी, रेशम की, अच्छी क्वालिटी के चीनी मिट्टी के बर्तनों की, ये सब चीजें कहाँ से आती थी?
पूरब से।
हाँ, पूरब से, अक्सर अरब और वेनिस के व्यापारियों के जरिए। और ये व्यापार सिर्फ चीजें नहीं लाता था, अपने साथ नए विचार, नई तकनीकें, डिजाइन, दुनिया के बारे में नई जानकारी, सब कुछ लाता था।
कोई उदाहरण है इसका, चीजों के साथ विचार आने का?
हाँ, जैसे इटली में जो मिट्टी के बर्तन बनाने की कला थी, जिसे मायोलिका कहते हैं, उस पर इस्लामी दुनिया, खासकर तुर्की की इज़नेक टाइल्स का साफ असर दिखता है। यही व्यापारिक होड़ थी जिसने यूरोपियों को नए समुद्री रास्ते खोजने पर मजबूर किया, और इसी से पहली बार दुनिया सही मायनों में एक ग्लोबल इकोनॉमी बनी। और कला भी इसी होड़ में धीरे धीरे एक बेशकीमती वस्तु बन गई, अमीरी और रुतबे का निशान।
समझ गई, व्यापार से पैसा आया, उस पैसे से कला पनपी, और ये सब वैश्विक लेन देन का हिस्सा था। अच्छा, अब बात करते हैं तकनीक और ज्ञान के फैलाव की। यहाँ दो चीजों का जिक्र बार बार होता है, एक तो प्रिंटिंग प्रेस और दूसरा वो लीनियर पर्सपेक्टिव।
हाँ, और ब्रॉटन इन दोनों को भी वैश्विक संदर्भ में देखते हैं। लीनियर पर्सपेक्टिव यानी पेंटिंग में गहराई दिखाने का तरीका, जिससे लगे कि चीजें दूर जाने पर छोटी दिख रही हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारी आंखें देखती हैं।
3D इफेक्ट जैसा?
हाँ, कुछ वैसा ही। इसे अक्सर ब्रुनेलेस्की और एल्बर्टी जैसे इतालवी कलाकारों की खोज माना जाता है, लेकिन ब्रॉटन इसे सिर्फ एक कला तकनीक नहीं मानते। ये दुनिया को नापने, समझने और एक तरह से कंट्रोल करने का गणितीय तरीका था। ये उस दौर की बढ़ती वैज्ञानिक सोच और दुनिया को तर्क से समझने की इच्छा का प्रतीक था। और इसकी जड़ें भी वो इशारा करते हैं कि इस्लामी गणित और प्रकाश विज्ञान यानी ऑप्टिक्स के ज्ञान में थी। इब्न अलहैतम का काम यहाँ फिर महत्वपूर्ण हो जाता है।
अच्छा, और प्रिंटिंग प्रेस, गुटेनबर्ग का आविष्कार तो यूरोप में हुआ था, है ना?
हाँ, आविष्कार यूरोप में हुआ, चल टाइप का लगभग 1450 के आसपास। लेकिन देखिए, छपाई का जो मूल आइडिया है वो नया नहीं था, वो चीन में सदियों से मौजूद था ब्लॉक प्रिंटिंग के रूप में। खैर, यूरोप में इस चल टाइप वाले आविष्कार ने वाकई क्रांति ला दी।
कैसे?
इसने किताबों को सस्ता और सुलभ बना दिया। ज्ञान अब सिर्फ मठों और बहुत अमीर लोगों तक सीमित नहीं रहा, बाइबल से लेकर नए वैज्ञानिक विचारों तक, नक्शों तक, और यहाँ तक कि मार्टिन लूथर जैसे धर्म सुधारकों के विचारों तक, सब कुछ तेजी से फैलने लगा।
अच्छा, मतलब विचारों का प्रसार बहुत तेज हो गया।
बिल्कुल, इसने ज्ञान को लोकतांत्रिक बनाने में मदद की, रिफॉर्मेशन को हवा दी और वैज्ञानिक जानकारी को स्टैंडर्डाइज किया। दुनिया के नए नए नक्शे छपने लगे जिनमें नई खोजों से मिली जानकारी शामिल होती थी। इसने फिर व्यापार और खोज यात्राओं को और बढ़ावा दिया, एक चक्र जैसा बन गया।
ठीक है, तो व्यापार, तकनीक और वैश्विक संपर्क, ये सब पुनर्जागरण को आकार दे रहे थे, लेकिन उस दौर की सोच, उसका दर्शन जिसे हम मानवतावाद कहते हैं, ब्रॉटन उसे कैसे देखते हैं? क्या वो भी इन वैश्विक धाराओं से जुड़ा था?
ब्रॉटन मानवतावाद को सिर्फ एक किताबी फिलॉसफी की तरह नहीं देखते, वो इसे स्टूडिया ह्यूमैनिटैटिस कहते हैं, यानी मानविकी का अध्ययन, लेकिन एक बहुत ही व्यवहारिक, प्रैक्टिकल नजरिए से।
प्रैक्टिकल कैसे?
देखिए, उस दौर में प्राचीन ग्रीस और रोम की भाषाएं सीखना, लैटिन और ग्रीक, उनके साहित्य और भाषण कला यानी रेटोरिक को समझना बहुत अहम हो गया था। क्यों? क्योंकि ये गुण उस समय के डिप्लोमैट्स, वकीलों, व्यापारियों, शहर के एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए जरूरी थे। ये उन्हें बेहतर तरीके से लिखने, बोलने, तर्क करने और अपना काम करने में मदद करते थे। ये सिविक लाइफ का, नागरिक जीवन का एक जरूरी औजार था।
अच्छा, यानी ये सिर्फ पुरानी किताबें पढ़ना नहीं था, बल्कि उनसे आज के जीवन के लिए कुछ सीखना था। और क्या इसमें भी कोई गैर यूरोपीय कनेक्शन था?
कुछ हद तक। ब्रॉटन बताते हैं कि पिकोडेला मिरंडोला या मार्सिलियो फिसिनो जैसे बड़े मानवतावादी विचारक सिर्फ ग्रीक और रोमन ज्ञान तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने अपने विचारों में अरबी दार्शनिकों की टीकाओं को, यहूदी रहस्यवाद कबाला की परंपराओं को भी शामिल करने की कोशिश की।
ओह,
ये दिखाता है कि विचारों का आदान प्रदान सिर्फ यूरोप के अंदर नहीं बल्कि अलग अलग सभ्यताओं के बीच भी हो रहा था, भले ही वो सीमित स्तर पर रहा हो। इसे शायद वैश्विक मानवतावाद की एक शुरुआती झलक कह सकते हैं।
हमने अब तक पुनर्जागरण की चमक दमक, उसके वैश्विक जुड़ाव, व्यापार और ज्ञान की बात की, लेकिन ब्रॉटन एक और पहलू पर जोर देते हैं जिसे वो चिंतित या अंधकारमय पक्ष कहते हैं। ये उस स्वर्णयुग वाली छवि से बिल्कुल मेल नहीं खाता।
सही कहा, ब्रॉटन उस रोमांटिक विचार को पूरी तरह खारिज करते हैं कि पुनर्जागरण सिर्फ आत्मविश्वास, सुंदरता और प्रगति का दौर था। वो कहते हैं कि ये गहरे डर, अनिश्चितता और उथल पुथल का भी समय था।
डर और अनिश्चितता? कैसे?
सोचिए, पुरानी दुनिया बिखर रही थी। धर्म के क्षेत्र में प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन ने यूरोप की सदियों पुरानी ईसाई एकता को तोड़ दिया। भयानक धार्मिक युद्ध शुरू हुए। विज्ञान में कोपरनिकस कह रहे थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। ये उस समय के लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका था। उनकी पूरी दुनिया की समझ हिल गई थी।
हाँ, ये तो बहुत बड़ा बदलाव था।
बिल्कुल, नई दुनिया यानी अमेरिका की खोज ने यूरोपियनों को ऐसी संस्कृतियों और लोगों से मिलाया जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। इससे उन्हें अपनी पहचान पर ही सवाल उठाने पड़े। और मैकियावेली की मशहूर किताब है द प्रिंस,
हाँ पढ़ी है उसके बारे में,
जो कहती है कि राजा को सत्ता में बने रहने के लिए जरूरत पड़ने पर क्रूर भी होना चाहिए, वो इसी अनिश्चित, अस्थिर दुनिया की पैदाइश थी। वो दिखाती है कि दौर कितना मुश्किल था।
और इस उथल पुथल का एक बहुत क्रूर, हिंसक चेहरा भी था, है ना, जिसके बारे में अक्सर कम बात करते हैं।
निश्चित रूप से, और ब्रॉटन उसे उजागर करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। जिसे यूरोप खोज का युग कहता है, वो अमेरिका के मूल निवासियों के लिए तबाही का युग था।
ऐसे लगता है
एजाट और इंका जैसी पूरी की पूरी विकसित सभ्यताएं यूरोपीय सेनाओं और उनकी लाई बीमारियों के कारण मिटा दी गई।
ये तो भयानक है।
करोड़ों लोग मारे गए, और फिर शुरू हुआ मानव इतिहास का एक सबसे काला अध्याय, ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार। अफ्रीका से लाखों लोगों को जानवरों के तरह जहाजों में भरकर अमेरिका लाया गया ताकि वो वहां चीनी, तंबाकू और कपास के खेतों में गुलामी कर सकें।
उफ।
और ब्रॉटन साफ तौर पर कहते हैं कि इस लूट, शोषण और गुलामी से जो बेशुमार दौलत यूरोप पहुंची, उसी दौलत के एक हिस्से ने पुनर्जागरण की भव्य कला, महलों और संस्कृति को बनाने में मदद की। तो ये सुंदरता और क्रूरता, ज्ञान और अज्ञान, प्रगति और बर्बरता का एक बेहद विरोधाभासी उलझावा दौर था।
ये सुनकर तो वाकई स्वर्ण युग की चमक फीकी पड़ जाती है। तो अगर हम ब्रॉटन के पूरे विश्लेषण को समेटना चाहें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? वो कौन से बड़े संदेश हैं जो हमें याद रखने चाहिए?
मेरे ख्याल से चार मुख्य बातें हैं जो जिन्हें हम पॉइंट्स में समझ सकते हैं। पहली, पुनर्जागरण एक वैश्विक घटना थी, अकेले यूरोपीय नहीं। इसका ताना बाना पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार, विचारों और तकनीकों के लेन देन से बुना गया था। ये याद रखना बहुत जरूरी है।
ठीक है, दूसरा?
दूसरी, यूरोपीय श्रेष्ठता का विचार भ्रामक है। इस्लामी दुनिया ने न सिर्फ प्राचीन ज्ञान को सहेजा बल्कि उसे आगे भी बढ़ाया, और उसका पुनर्जागरण पर गहरा असर था। इसे नजरअंदाज करना इतिहास को अधूरा देखना है।
और तीसरा?
तीसरा, अर्थव्यवस्था और संस्कृति गहरे जुड़े हैं। व्यापार, पैसा, बैंकिंग, ये सब पुनर्जागरण की कला और नए विचारों के पीछे की असली ताकत थे। इन्हें अलग करके नहीं देखा जा सकता।
और चौथा?
चौथा, ये सिर्फ स्वर्ण युग नहीं था, ये गहरे बदलावों, चिंता, धार्मिक और राजनीतिक संघर्षों और भयानक हिंसा का भी दौर था। सुंदरता और क्रूरता साथ साथ चल रहे थे। ये कॉम्प्लेक्सिटी समझना जरूरी है।
ये वाकई इतिहास को देखने का एक बिल्कुल अलग और ज्यादा मुकम्मल तरीका लगता है। यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया हमेशा से जुड़ी हुई रही है, और तरक्की की कहानियों के पीछे अक्सर छुपी हुई या अनदेखी कीमत भी होती है।
हाँ, और ये भी कि हम इतिहास को कैसे लिखते और याद रखते हैं, ये भी अपने आप में एक अहम सवाल है। कौन सी कहानियां सुनाई जाती हैं और कौन सी दबा दी जाती हैं या नज़रअंदाज कर दी जाती हैं?
अगर ब्रॉटन के इन मुख्य विचारों को कुछ यादगार पंक्तियों में कहना हो, जैसे कोट्स होते हैं, तो वो क्या हो सकती हैं?
हाँ, कुछ इस तरह से सोच सकते हैं। पहला सार, पुनर्जागरण की कहानी यूरोप के अकेले फिर से जागने की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया, खासकर इस्लामी पूर्व के साथ उसके व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्ते की कहानी है। ये सीधे यूरो केंद्रित सोच पर सवाल उठाता है।
बिल्कुल।
महान कला या विचार किसी अकेली यूरोपीय प्रतिभा की उपज नहीं थे, बल्कि कई संस्कृतियों और परंपराओं के मिलने और टकराने से पैदा हुए थे। ये संयोग और आपसी प्रभाव पर जोर देता है।
और चौथा?
चौथा सार, जो शायद सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है, एक आत्मविश्वास से भरे सुनहरे दौड़ के बजाय पुनर्जागरण को गहरे डर और चिंता का दौर समझना चाहिए, जहां पुरानी दुनिया टूट रही थी और एक नई वैश्विक दुनिया हिंसक तरीके से जन्म ले रही थी। ये उस युग की जटिलता और विरोधाभास को पकड़ता है।
ये आखिरी वाली बात तो बहुत असरदार है। ये हमें उस दौर के लोगों को सिर्फ उनकी कलाकृतियों से नहीं, बल्कि उनके समय की चुनौतियों और अनिश्चितताओं के साथ समझने में मदद करती है। वो सिर्फ खूबसूरत पेंटिंग नहीं बना रहे थे, वे एक तेजी से बदलती, डराती हुई दुनिया में अपना रास्ता तलाश रहे थे।
बिल्कुल। और यहीं से सवाल उठता है कि इन सब बातों का आज हमारे लिए क्या मतलब है? मतलब 500 साल पुरानी इस कहानी से हम आज क्या सीख सकते हैं?
हाँ, ये जानना दिलचस्प होगा। इतिहास सिर्फ बीती हुई कहानी नहीं होता, उससे कुछ सबक भी मिलते हैं ना?
कई सबक हैं। मेरे ख्याल में पहला, सीखने और नया रचने के लिए खुलापन। जैसे पुनर्जागरण में अलग अलग संस्कृतियों के मिलने से नई ऊर्जा आई, वैसे ही आज भी अलग अलग नजरियों और संस्कृतियों को समझने और उनसे सीखने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वो हमारी पढ़ाई हो या हमारा काम। दूसरा, टीम वर्क और सहयोग की अहमियत। आज की दुनिया में भी सबसे अच्छे और नए आइडियाज अक्सर तब आते हैं जब अलग अलग पृष्ठभूमि और हुनर के लोग मिलकर काम करते हैं। डाइवर्सिटी में ही क्रिएटिविटी है।
और वैश्वीकरण, वो तो आज भी हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा है।
बिल्कुल। तीसरा सबक वही है, वैश्वीकरण को गहराई से समझना। आज जो दुनिया इतनी जुड़ी हुई लगती है, ये कोई अचानक हुई बात नहीं है। इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं, पुनर्जागरण जैसे दौर तक जाती हैं। इतिहास हमें आज के वैश्विक मुद्दों, व्यापार, माइग्रेशन, सांस्कृतिक टकराव को एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखने में मदद करता है।
और एक और बात,
चौथा, आलोचनात्मक सोच विकसित करना, क्रिटिकल थिंकिंग। हमें हमेशा सुनाई जा रही कहानियों पर सवाल उठाना चाहिए। ये कहानी कौन सुना रहा है, क्यों सुना रहा है, क्या इसका कोई और पहलू भी है जिसे छुपाया जा रहा है, चाहे वो इतिहास हो या आज की खबरें।
ये समझना कि हमारी साझी इंसानी विरासत किसी एक संस्कृति या सभ्यता की देन नहीं है, बल्कि सबके योगदान से बनी है। जिसे हम अपना और पराया, पूरब और पश्चिम कहते हैं, वो हमेशा से एक दूसरे से गुंथे रहे हैं। ये सोच हमें शायद ज्यादा सहिष्णु और कम पूर्वाग्रही बना सकती है।
बहुत अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल सहमत हूँ।
इस पूरी बातचीत में मेरे लिए सबसे चौंकाने वाली बात यही रही कि पुनर्जागरण की जड़ें कितनी गहरी और कितनी फैली हुई थीं। स्कूल की किताबों से जो छवि बनी थी उससे बिल्कुल अलग। ये जानना कि कैसे व्यापार, राजनीति, युद्ध, धर्म, सब कुछ कला और विज्ञान से जुड़ा था, और कैसे यूरोप के बाहर की दुनिया, खासकर इस्लामी दुनिया ने इसमें इतनी अहम भूमिका निभाई, ये वाकई आंखें खोलने वाला था। ये सिर्फ लियोनार्डो और माइकलएंजेलो की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी कहानी है।
इंसान की रचनात्मकता और ज्ञान का विकास अकेलेपन में नहीं होता, ये हमेशा विचारों के आदान प्रदान, बहस, सहयोग और हाँ, कभी कभी टकराव से ही आगे बढ़ता है। ब्रॉटन का नजरिया हमें इतिहास को सिर्फ राजाओं और तारीखों के लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि इंसानी रिश्तों, आर्थिक ताकतों और विचारों के एक जटिल जाल की तरह देखने की दावत देता है। और यह समझना अहम है कि अतीत की ये जटिलताएं, ये रिश्ते, ये विरोधाभास, ये आज भी हमारी दुनिया को बना रहे हैं। ये सिर्फ गुजरे हुए कल को समझने की कोशिश नहीं है, बल्कि हमारे आज और आने वाले कल को बेहतर ढंग से जीने का रास्ता खोजने की भी कोशिश है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकता फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।